نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम सब यहाँ बैठे हैं इस सोच, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि हमारा आज का यहाँ बैठना हमारे जन्नत में बैठने का ज़रिया बन जाए। वो कोई एक ही नेकी होगी जो हमें जन्नत में ले जाएगी। जिन लोगों ने सूरह अल-आराफ़ पढ़ी है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जन्नत और जहन्नुम के बीच में एक आराफ़ नाम का मुकाम है। बहुत सारे लोग वहाँ रोक दिए जाएंगे और जब पूछा जाएगा तो बहुत सारी और चीज़ों में से एक वजह ये भी होगी कि बस एक नेकी की कमी है। नेकियां और गुनाह बराबर हैं और अगर एक नेकी मिल जाए एक्स्ट्रा तो फिर वो भी जा सकते हैं जन्नत में। और भी बहुत सारी वजूहात होंगी लेकिन एक ये वजह तो है। उस वक्त फिर इंसान को उस एक नेकी की कदर आएगी। अल्लाह करे कि हमारा आज का ये बैठना हमें किसी ऐसे मुश्किल वक्त में काम आ जाए। हम सब यहाँ दीन के लिए आए हैं, इल्म के लिए आए हैं, फोकस्ड होना ज़रूरी है। सेल फोन्स को बंद करके बैग में डाल लेते हैं। जिस तरह जहाज़ में फ़्लाइट के दौरान अगर फ़ोन की बेल बजे या वाइब्रेशंस हो तो नेविगेटर ख़राब हो जाता है, तो जिस तरह से जहाज़ों में ये सब कुछ होता है इस तरह यहाँ भी हमारे पास हो सकता है। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इसको बेहतरीन तरीके से समझें। थोड़ी देर हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ना करे घर में कोई इमरजेंसी आए कि जिसकी वजह से हमारा यहाँ से जो सुनने का सिलसिला ये मुनक़ते हो जाए। आप देखिए कि दिल का लफ्ज़ हर लिहाज से बहुत मशहूर है। फिल्में दिल की बातें करती हैं, ड्रामे दिल की बातें करते हैं, नॉवेल्स दिल के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब तो बच्चा बच्चा कहता है कि मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल दिल दिल, यानी जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स, जिस्म के बहुत सारे अज़ा, जिसमें मशहूर तरीन और अहम तरीन जो है वो दिल है। तो आखिर इस दिल की क्या बातें हैं, क्या कुरान और सुन्नत भी इसके बारे में कुछ कहते हैं? जिस्म का बहुत ही मारूफ और मशहूर ऑर्गन है, दुनियावी चीज़ों में भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो आप में से बहुत सारे लोग उससे वागा है कि आपने फरमाया कि जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है और अगर वो ठीक रहे तो सारा जिस्म ठीक रहता है और खूब जान लो कि वो दिल है। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बन कर आए, अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, तो वो दिल जो आपसे नफ़रत और बुग़्ज़ करते थे लेकिन जब इस्लाम आया तो आप उनके महबूब बन गए। जैसे आपने मारूफ वाक्या पढ़ा भी और सुना भी होगा, हिंदा का अबू सुफियान की बीवी थी और जब मुसलमान होती हैं तो आकर नबी सल्लम से कुछ बेतकल्लुफाना बातें करती हैं और उसमें एक बात ये थी कि एक वो वक्त था कि जब मेरा दिल करता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई तबाह और बर्बाद हो तो बाप हो और अगर किसी का घर वीरान हो तो बाप का घर हो, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन आज ये हाल है कि मेरे दिल में अगर किसी की मोहब्बत है तो बाप की है और अगर किसी घराने की खैर और फलाह मैं चाहती हूँ तो बाप का घर है। क्या बदला हिंदा का? जिगर बदल गया, फेफड़े बदल गए, आंखें बदल गईं, कान बदल गए, नहीं दिल बदल गया। ये दिल है जो इंसान से फैसले करवाता है कि सदमे घर की तरफ जाना है या तुमने मस्जिद की तरफ जाना है। आप में से बहुत सारी बहनें अक्सर परेशान रहती हैं अपने बच्चों की हिदायत और इस्लाह के लिए। बच्चे मस्जिद नहीं जाते, बच्चे मदरसे नहीं जाते, बच्चे ये नहीं वो नहीं। अब आप उसके ऊपर उनको कुछ भी कहती सुनती रहें, आपका मसला, बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, बच्चे अपने दिल की सुनेंगे। आप अपने बच्चे के दिल को बदल दीजिए या उसकी कोशिश कीजिए, उनका दिल जो उनसे कहेगा वो वही करेंगे। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद समझा पाऊँ। आप देखिए कि ये घर हमारी इस बहुत ही अजीज़ बहन का घर है। अगर ये किसी खातून को एज़ अ मेड अपने घर में रखती हैं, हर महीने एंड पे उनको कुछ पे दी जाएगी, तो वो मेड किन की बात सुनेगी? इनकी सुनेगी ना। ये कहेंगी खाना बना दो, वो खाना बना देगी, कपड़े धो दो, कपड़े धो देगी, जो भी काम दिए जाएं। बिलफर्ज ये अपनी हमसाई के घर अपनी उस मेड को कुछ दे भेजें कि जाओ ये इनके घर खाना दे। भेजना चाहिए, अच्छी बात है, हमसायों को खाने भेजने चाहिए, बुरी बात नहीं है। अब जूँ ही वो जाए तो उनको दे सलाम दुआ करे ये वो, तो वो हमसाई उस मेड को कहे कि ज़रा आओ ना, ज़रा ये बर्तन तो धो दो।
अच्छा ये ज़रा कचरा तो उठा दो, हो सकता है पहली दफ़ा या मुरव्वत में एक आध काम वो उसका कर दे, लेकिन अगर एक से दो, दो से चार, और जबकि ये भी उसको एक्सपेक्ट कर रही है कि जल्दी आना, क्या वो मेड इनकी हमसाई की बात मानेगी या इनकी मानेगी? इनकी मानेगी, बस जो जिसका गुलाम या मुलाजिम होता है ना वो उसकी बात मानता है। हमारे दिल हमारे हाकिम हैं, हम अपने हाकिम की मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा कारनामा, और आपने जो दुनिया में इनकलाब बरपा किया, जिसको आप और मैं आज इनकलाबे मोहम्मदी भी कहते हैं, कह लीजिए कोई हर्ज नहीं है कहने में, लेकिन असल में वो इनकलाब दिल का इनकलाब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल बदले। और एक लफ्ज़ बोलूँगी तो आप सबको वाक़या याद आ जाएगा, उम्र का क्या बदला था? आप में से कोई एक ऐसी सिस्टर हैं इधर कि जिन्होंने हज़रत उमर के कबूले इस्लाम का वाक़या ना पढ़ा या सुना ना हो? सब ने सुना हुआ, कैसे कत्ल के इरादे से गए नंगी तलवार हाथ में, और जो सहाबा अल्लाह के नबी के पास बैठे हैं और उमर को आता देख रहे हैं, एक तो उमर और हाथ में तलवार और है भी बरहना तलवार, कांपने लगे। अल्लाह के नबी उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, इरादे ख़तरनाक है। का कोई बात नहीं, आने दो, उमर आ नहीं रहा, बुलाया जा रहा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ बुलाए जाते हैं। अल्लाह ने उमर को बुलाया, नबी की दुआ कबूल होगी। सहाबी कहते हैं मैं तो सुबह ही सुन रहा था, अल्लाह के नबी कह रहे थे अल्लाह दीन को या तो उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हिशाम से फ़तह दे दे, इस्लाम को गलबा दे दे, ये उमर आए हैं। तो उमर का क्या बदला था? दिल बदला था। पूरे अरब में नबी सल्लम की जितनी मुखालफत थी, एक एक करके उन्हीं घरों में से जिनके बाप आपके जानी दुश्मन थे, अबू तालिब को देख लीजिए इस्लाम से दूर थे, अली किसके बेटे थे? अबू तालिब के बेटे थे। क्या पता चला कि बाप जिन चीज़ों में आपके मुखालिफ बने रहे, अल्लाह ने उन्हीं की औलादों को नबी का मुआविन बना दिया। सबसे बड़ी तब्दीली दुनिया में कल्ब की तब्दीली है। आप में से शायद कोई मेडिकल प्रोफेशन से वाकिफ़ हो, नहीं भी है तो, वैसे पाकिस्तान में आधे लोग डॉक्टर ही होते हैं, उनको पता होता है डिस्प्रिन खाते हैं, फ्लैजल खाते हैं, एस्प्रिन खाते हैं, इस तरह खाते हैं। ये मेरे हस्बैंड का कमेंट है, सच्ची बताऊँ तो, वो कहते हैं यहाँ हर दूसरा बंदा डॉक्टर है, मुफ्त मशवरे देता है। वकील तो इतनी भारी फीसें लेकर मशवरे देते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तान में मुफ्त मशवरे मिलते हैं, और साथ परहेज़ भी बताते हैं कि इसके बाद ये नहीं खाना, इसके बाद ये नहीं, फिर भी इसके बावजूद इतने लोग बीमार हैं। तो बहरहाल आप देखिए कि तब्दीली कल्ब कितना बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन होता है ना। कई साल पहले आज हम अपने माजी में झांके तो हमारी होश में ही दिल की ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन पहली दफ़ा हुआ था, या जब हमें पता लगा होगा, इतना खौफ आता था कि जिस वक्त दिल बदल रहे होते हैं उस वक्त जिस्म में क्या हो रहा होता है। लेकिन आप देखिए दिल बदल जाता है ना, अब तो पूरे का पूरा हार्ट उठा के उसका उसको देते हैं, फिल्मों वाले तो वैसे ही दिल देते रहते हैं एक दूसरे को, तो मेरा दिल ले लो मैं तुम्हारा दिल ले लूँ। हम तो जब दिल तब्दील होते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है दुनिया में। जब एक लड़की लड़के को आपस में मोहब्बत होने लगती है तो उस वक्त, अब तो खैर एक नोन है, इट्स ओके, वाट एवर, जो भी पहले एक्सपेक्टेड था अब एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन शुरू में शोर मचता था, खबरदार ये शादी नहीं हो सकती, फिर हो जाती थी, डांट डूंट के दबका मार के फिर सीधा कर देते थे घर वालों को, ठीक है। तो क्या पता चला कि दिल ही असल में सब कुछ है। आप आज यहाँ क्यों आए? माजरत के साथ, मेरे कहने पे नहीं आए, ये आंटी जी के और घर वालों के कहने पे कोई नहीं आए, आप अपने दिल के कहने पे आए हैं। लाखों लोगों तक एक फ्लायर जाता है हमारा, लाखों लोगों तक, अल्लाह जिस तक भी पहुँचा दे। कितने लोग आते हैं जिनका दिल कहता है कि चलो आज चलते हैं, कई होते हैं बेचारे जिनका दिल मचल रहा होता है, ये भी बहुत है माशाल्लाह, मजबूरियाँ, हालात, रुकावटें, जैसे तबूक पे जाने वाले कितने थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिन बेचारों के पास सवारियाँ नहीं थी वो नहीं जा सके ना। तो असल चीज़ दिल है, और अल्लाह के नबी ने कहा कि एक बंदा अच्छी जगह पे मौजूद है और अब कह रहा है क्या मुसीबत है मैं क्यों आ गया, ना ही आता, तो उसको वहाँ अच्छी जगह पे बैठने का कोई अजर नहीं। आप अच्छी जगह पे बैठे हैं लेकिन नीयत ख़राब से आए हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आप आए हैं इधर और मैं सिखाने ना हूँ, आप सीखने ना आए, हम किसी और ही मोटिव पे आए, तो लोग तो कहेंगे कि हम दर्स सुना रहे हैं, लेकिन फरिश्तों को गलती नहीं लगती। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़लून, बेशक तुम्हारे कंधों पे किरामन कातिबीन है जिनको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, उनको सब कुछ पता होता है कि तुम्हारी क्या औकात है। तो बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा कि कि दिल के अंदर क्या है, अल्लाह ने इसको छुपा दिया। आप अपने इस वजूद को देखिए ना, आपने कुरान की आयत भी बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, आयत 30 आई थिंक सूरत नूर की, कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मसल नूर ही का मिशकात, अल्लाह तो ज़मीन आसमान का नूर है और उसके नूर की मिसाल मिशकात की तरह। आप देखिए कि जो दिल है उसके इर्द गिर्द पसलियों का एक ढांचा, ऐसे है ना, रिब्स हड्डियों के ऊपर स्किन है, यानी ऐसे लगता है कितने पर्दों में, जैसे वो लालटेन होती थी ना कभी किसी दौर में, उसके अंदर एक छोटा सा चिराग जलता था और उसके बाहर शीशे पे शीशे पे शीशे। किस किस ने लालटेन देखी हुई है? चलिए आज लालटेन को ही पकड़ लेते हैं फिर। आप देखिए कि लालटेन के बाहर शीशे का एक केच लगाते हैं ना, हम छोटे थे सोचते थे इसकी क्या ज़रूरत है, कभी उतार दें हवा चलेगी तो शोला बंद हो जाएगा, एक सूरत। दूसरा क्या उसका फ़ायदा होता है? उसे रिफ्लेक्ट होती है। आप देखिए कि जब शीशे पे लाइट पड़ती है ना तो रिफ्लेक्ट होती है, ये मंजर सबके लिए नोन है। अब आप अपने ऊपर लीजिए, अपने दिल को इस वक्त एक लालटेन बनाइए जिसके अंदर ईमान का एक छोटा सा चिराग जल रहा। जब दिल का शीशा साफ होता है ना तो वो रोशनी की किरणें फूट फूट के बाहर पड़ती हैं। ये है कि ईमान वाले का दिल, अल्लाह सुबहाना ताला ने ईमान वाले के दिल को कुरान पाक के बिल्कुल मिडल में जाकर अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूर ही का मिशकात, यानी अल्लाह तो ज़मीनों आसमान का नूर है लेकिन वो नूर उसकी इल्म और उसकी खूबियाँ उसका परताव किधर है? ईमान वाले दिल में। वो कहते हैं ना कि तू निगाहों में नहीं समाता, एक ईमान वाले के दिल में तू समा जाता। तो दिल को साफ करना है। दिल की बहुत सारी किस्में आ चुके आपके साथ, 13 किस्म के दिलों का वादा है, तो सिर्फ पहले नामों की हद तक आपको दिखा देती हूँ। कुरान पाक में कल्ब के मौजू पे बहुत सारी आयात है। अगर आप अल्लाह ताला के कलाम को खोलें तो मैंने अभी जो काउंट की थी सूरत हशर की आखिरी आयतों में से आयत 21 है, ज़रा से इस पे गौर कर लेते हैं। लो अनजल न हाजल कुराना, अगर हम नाजिल करते इस कुरान को। सोचिए ज़रा, वो कुरान जो आपका भी मेरा फेवरेट है और हम सब मुसलमानों की जान है वो कुरान, अल्लाह ताला कहते हैं अगर इस कुरान को हम नाजिल करते अला जबलिल एक पहाड़ पर, और आप सब जानते हैं कि कुरान कहाँ नाजिल हुआ था, अला कल्बी का, सूरत बकरा में अल्लाह ताला आखिर से पहले पहले पारे में कहते हैं कि नबी हमने आपके दिल पे कुरान को नाजिल किया। हाँ ये हमें पता है कि आप उससे पहले गारे हिरा में जा जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, मुजाहदे करते थे, लेकिन यह हमारा ईमान है कि कुरान नबी के दिल पर नाजिल हुआ था। ठीक है, आप सोचिए कल्बे मोहम्मद की बजाय पहाड़ पर नाजिल होता। मैं इसको थोड़ा सा और खोल देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नहीं, हिरा पहाड़ के ऊपर कुरान नाजिल होता। हो सकता था ना, एक पहाड़ है, आज भी बहुत सारे लोग मोहब्बत में जाते हैं देखते हैं उस गार को। अगर कुरान जिब्राइल लाकर उस पहाड़ के ऊपर रख देते जिसमें गारे हिरा है और जिसके अंदर अल्लाह के नबी थे, तो उस पहाड़ का हाल क्या होता? लराई तहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, लराई तहु तुम देखते खाशियन खुशू से, यानी ऐसे उसके ऊपर एक वजद तारी हो जाता अपनी ज़ुबान में कह लें, और मुतसद्दियन कांपने लगता, किस वजह से? मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से। यानी ये नबी का दिल था जो इस कुरान को सहार गया। ये अगर इस पहाड़ पे भी नाजिल हो जाता तो वो इस कुरान का बोझ ना सह सकता। और यही बात तकरीबन फ़र्क से थोड़े सूरत अल-अहज़ाब के आखिरी आयतों में, इन नौरदनलमानता, हमने इस अमानत को पहाड़ों पे पेश किया, ज़मीन पे आसमान पे, सब ने फाबईना इनकार ही कर दिया, भाई हमसे ये एतात का बोझ नहीं लिया जाता। वह हम लहुल इंसान, तो क्या पता चला, दिल इतनी मज़बूत चीज़ है कि पत्थरों और पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि इस दिल के बारे में कुरान पाक में क्या आता है और हमें आपको अल्लाह ताला ने इसमें क्या कुछ कहा है। तो आप देखिए, अगर सिर्फ लफ्ज़ कल्ब, अरबी ज़ुबान में दिल के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा बारीकियों में अगर आपको ना भी ले जाऊँ क्योंकि आप एक बहुत ही हल्की फुल्की टॉक सुनने के मूड में हैं, लेकिन दिल की 16 से ज़्यादा किस्में कुरान में आई हैं। किस किस को पता है, कोई बताना चाहे? ऐसी उर्दू में बता दें, अरबी में नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आयत नहीं बता सकते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए, हमारा इस कुरान के साथ गहरा ताल्लुक होना चाहिए। इस वक्त भी आपको मैं स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, क्योंकि आज स्क्रीन मेरे हाथ में है, और स्क्रीन को कंट्रोल करके अगर आप और मैं अपने दिल को कंट्रोल कर लें तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। कुरान पाक में आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना गौर व फिक्र कर दिया गया और अल्लाह ने वो सहूलतें दे दी कि अगर आप एक लफ्ज़ डाल दें कुरान का तो आपको पूरे कुरान में वो आयत कहाँ है, ये देखिए। लफ्ज़ कल्ब दिल के लिए आम लफ्ज़ है, और बहुत सारे, आप छोड़ दें उसको, नफ्स भी है, अफिदा भी है, लेकिन लफ्ज़ कल्ब कुरान पाक में 168 बार है, 168 टाइम्स लफ्ज़ कल्ब आया। और दिल को कल्ब क्यों कहते हैं? कल्लब युकल्लिबु तक़लीब, इनकलाब का लफ्ज़ सुनते हैं उर्दू में, ये है लफ्ज़, दिल पलटते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए सूरत बकरा की आयत 7 में आता है, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबी, हमने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। ये किसका दिल है? काफिर का दिल है। अगली आयत देख लीजिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 10, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, ये किन की बात है, कोई बताएगा आप में से? देखिए कुरान आपके सामने है ना, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, बोल दीजिए जिसको आता है, मुनाफिक का दिल, शाबाश। चलिए तीसरी देखिए, तरतीब के अतबार से तो सूरत बकरा की आयत नंबर 74 है, सुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, ये किसकी बात है? गाय के वाक़े के बाद आई है ये आयत, मुर्दे को अपनी आँखों से देखने के बावजूद अल्लाह ने उनके सारे इतने बड़े मसले हल कर दिए। क्या हुआ था सभी को पता है कि बनी इसराइल में गैरों के साथ रहते रहते गाय की मोहब्बत बहुत बढ़ चुकी थी, गाय माता कहने लग गए। इसी तरह उनके दिलों में ये आ गया था कि मरने के बाद मुर्दों को अल्लाह ज़िंदा नहीं करेगा, इसी तरह उनके इलाके में कह लें कत्ल हो गया। अब अल्लाह ताला ने इन सारे इज़्तिराबात को दूर करने के लिए उनको एक सादा सा हुक्म दिया था कि कोई भी गाय ले लो और उसको ज़िबा करो, और उसका गोश्त थोड़ा सा गाय का लो और मुर्दे के जिस्म पे लगा दो, तो क्या होगा? अल्लाह की तरफ से मौजज़ा होगा, मुर्दा ज़िंदा होगा। मुर्दा ज़िंदा होगा तो बता देगा मुझे किसने कत्ल किया, कत्ल का फ़ैसला ख़त्म, पुलिस का काम ख़त्म हो गया। और इसी तरह से तुम कातिल को भी जान लोगे, और चूंकि अपने हाथ से गाय को ज़िबा करोगे तो दिल से गाय का तकद्दुस भी ख़त्म होगा, और उस मुर्दे को ज़िंदा होता देखकर तुम्हें मरने के बाद जीने का भी यकीन आ जाएगा। ये तीन बड़े वाक्यात थे, सभी को पता है। उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया सवाल, गाय सीधी सी थी, कोई भी ले ले, लेकिन चूँकि करना नहीं चाह रहे थे ना, क्योंकि इंसान जो काम करना नहीं चाहता ना उसके लिए उसको बहाने बड़े सोचते हैं, कहते हैं ना करने के 100 बहाने, हाय कैसे करें। यानी असल में तो उनका जुमला ये था कि हम अपने खुदा को ज़िबा कर दें, जैसे आज किसी हिंदू धर्म पे ईमान रखने वाले को भी कह दे कि गाय को ज़िबा कर दें तो उसके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल यही कैफियत उस वक़्त बनी इसराइल जो कि मुसलमान थे उनकी थी, और होता भी यही है कि बाज़ दफ़ा हम गैरों में रहते हुए उनकी बहुत सारी चीज़ों का दिफा करने लगते हैं। तो उन्होंने बहुत मुश्किल सवालात करके हीलो हुज्जत जब की, और नतीजा वही हुआ जो निकलता है ऐसे वक्तों में। अल्लाह कहते वमा कादु यफ़लून, करने वाले कोई नहीं थे लेकिन अल्लाह ने करवा लिया, भारी कीमत देकर वो गाय मिली। अब होना क्या था कि इतनी बड़ी बात, आज भी देखिए ना, आज को मुर्दा ज़िंदा हो तो कितने लोग उसको देख के कांप जाए। उम्मीद क्या थी कि इस वाक़े को देख कर वो मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम पे आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं सुम मकसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, इनका उस वाक़े को देख कर भी दिल ना खुला, बल्कि तो ये किस दिल की बात है, सुम मकसद कुलूबुकुम, जो अल्लाह की निशानियाँ अपनी ज़िंदगी में देखे लेकिन फिर ना माने। आप कहेंगे हाँ सच्ची, हम भी मुर्दे को ज़िंदा होता देखे ना तो हम फौरन मान जाएंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। सॉरी टू से दैट, कि आपने मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई निशानी नहीं देखी। आपकी मेरी ज़िंदगी में आप देखिए कितनी दफ़ा ऐसा ना हुआ होगा, कोई हमारा बीमार बिल्कुल मौत के मुँह से बच के आ गया, बच्चा डूबते डूबते बच गया, घर टूटते टूटते बन गया, तो ये मेरी आपकी ज़िंदगी के मौजज़े होते हैं। ईमान वाला हमेशा गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। एकदम हादसा होते होते नहीं बचता, गाड़ी टकरा सकती है। तो अल्लाह ताला इस आयत से बताते हैं कि वो दिल जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की निशानियाँ और उसके मौजज़ात होता देखें और ना टूटें, अल्लाह के आगे ना झुकें, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। तो ये कल्बे कासी हैं, सख्त दिल हैं। बाद में खुलासा कराऊँगी आपको, लेकिन सिर्फ अभी आयतों के साथ चलिए। फिर आप देखिए आयत नंबर 88 सूरत बकरा की, वक़ालु कुलूबुना गुल्फ, आप में से कोई भी, मैं सबको दावत देती हूँ कि आप बता सकते हैं ये आयत किन के बारे में आई है कुरान में। फिर उन्होंने कहा हमारे दिल गिलाफों में है, बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि लानत कर दी अल्लाह ने उनके ऊपर उनके कुफर की वजह से, फ़कलीलम मा युमिनून, ये बहुत थोड़े लोग हैं जो ईमान लाते हैं। जी ये किसका कॉल है? बनी इसराइल के वो उलमा जिनके दिल सख्त हो चुके थे। लिख लीजिए, जब किसी जगह दीनदार का दिल सख्त हो जाए तो आम लोगों का तो हक़ बनता है कि उनके दिल सख्त हो। यही हुआ, कहते थे हमारे दिल पे तेरी बात असर नहीं होती। देखिए नबी मीठे बोल, नबी कॉलम बलीगन के मालिक, नबी कुलुल नास हुस्ना पे अमल करने वाले, नबी की बात को एक बार सुन लेता था उसका दिल अपना नहीं रहता था। ये सच बात है, मुबालगे के बग़ैर आप जाके वाक़ात सुन लीजिए। नबी सल्लम पे सबसे पहला इल्ज़ाम जो मक्का के इब्तदाई दौर में आपकी नबूवत के लगा वो क्या था? जादूगर है, कहते थे लफ्ज़ों का जादू कर देते हैं, आज की ज़ुबान में आप कह दीजिए हिप्नोटाइज कर लेते हैं। और वो वाक़ आपने सुना तो फैल दोसी का, और बड़े बड़े लोग जो उस दौर में मक्का सबको आना होता था, याद रखिए अल्लाह ने अपने काम के लिए हमेशा मरकज़ी जगह चुनी, जो भी हज या उमरा करता वो मक्का आता, पूरे अरब से लोग आते थे। पहले तो चंद साल, 3 साल तक लोगों ने अल्लाह के नबी और आपके साथियों की कोशिशों को कोई अहमियत ही ना दी, क्योंकि थोड़े थे ना, जब काम थोड़ा होता है तो नज़रों में नहीं आता, कोई भी नहीं उसको अहमियत समझता। बहुत हुआ था, ये कहते थे कुछ लोगों का नौज़बिल्ला दिमाग फिर गया, सर फिरे लोग, ये ऐसी बातों में लग गए, पता नहीं किसके पीछे लग गए, कौन अपने आप को नबी कहने लग गए और ये उसके पीछे लग गए, और थे भी सारे यंगस्टर्स इस पे, और भी उनको लगा बाप सारे मुखालिफ कुफर के हमायती और बेटे सारे दोस्त अल्लाह के नबी के। खैर किस्सा मुख्तसर, अब जब हर घर से किसी से बेटा आ रहा है तो किसी की बीवी आ रही है तो किसी का भाई आ रहा है, अब इस्तराब शुरू हुआ। अब मक्का वालों को पेश आई मुश्किल कि ये क्या हो गया, ये तो हर घर में आ गया मसला। अब ज़रा सा उन्होंने सोचने लगे, और जब देखा तो कहा अच्छा जाते हैं ज़रा देखते हैं ये है कौन, क्योंकि दिल नहीं मानता ना, आप कभी किसी की बड़ाई नहीं मानेंगे। आपके दिल में नफ़रत हो, बुग़ज़ हो, हसद हो, रकाबत हो, कोई नेगेटिव जज्बा हो, आपको सोने जैसी चीज़ सोना नहीं लगेगी। आप कहेंगे मैं नहीं खाती, मैं नहीं देखती, मेरा दिल नहीं कर रहा। दिलों में चूँकि नबी से बुग़ज़ था ना, तो उनके दिलों पर असर नहीं हो रहा था, लेकिन ये उनका मुशाहिदा था कि एक बार अल्लाह के नबी की बात सुन लेना तो दोबारा सुनने को दिल करता है। इस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जादूगर है। हज का मौसम आ गया, और जब हज का सीज़न आता था तो चारों तरफ से लोग आते थे। मक्का वालों को एक फ़िक्र लगी कि ये शख्स मक्का में आया, यानी थे तो आप मक्का में ही, लेकिन उनका गुमान क्या था कि इसने ये जो नबूवत का दावा किया ये नया दावा है। अब जब बाहर से लोग आएंगे उनको भी पता लग जाएगा जब ये आएंगे मक्का में, एक काम करते हैं जो लोग हज के लिए आएँ उनको पहले ही बाहर ही खड़े करके, यदि छोटे छोटे तो शहर थे, रस्ते थे, दरवाजे होते थे, तो वहाँ लोगों को अपनों को खड़ा किया मक्का वालों ने। जो भी हज उमरे के लिए नया बंदा आ रहा होता तो उसको कहते सुनो आजकल हमारे शहर में एक दीवाना आया हुआ है, पागल है, मजनू है। पहले शुरू में कुछ कुछ कहते थे, मतलब किसी ने कहा ये मजनू है, किसी ने कहा ये दीवाना है, किसी ने कहा शायर है। वो बाद में फिर एका किया था कि लोग बाद में जाके बातें करते हैं कि वो इतने मुख्तलिफ मिजाज लोग हैं उनके बारे में। किस्सा मुख्तसर, एक सहाबी जो अपना कॉल बयान करते हैं, कहते जब मैं मक्का में एंटर होने लगा मुझे बाहर ही रोक दिया गया, अल्लाह के नबी से जो रोकते थे बड़े नाम थे। उसने कहा सुनो आजकल हमारे शहर में एक जादूगर आया है, और जो उसकी बात सुनता है वो बाप दादा का दीन छोड़ देता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, जब भी किसी सोसाइटी में हक आएगा, अल्लाह रसूल की बात आएगी, कुरान और सुन्नत का पैगाम आएगा, अक्सर लोगों को अपने वक्त और अपने बाप दादा के तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ लगेगा। लोग हमारे बड़े गलत थे, लोग हमारी अम्मा जी ये ख़त्म दिलाती थी तो वो गलत थी, तो क्या ये कुंडे ठीक नहीं हैं और ये प्लातें ठीक नहीं हैं, यानी लोग टैली करते हैं, ऐसी राह जाते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने आते ही को ये बातें थोड़ी छेड़ी होंगी, लेकिन बस एक इनसिक्योरिटी फील होने लगती है उनको हुई। ये कहते हैं मैं इतना डर गया, अमर बिन नुफैल का भी नाम आता है और तुफैल दौसी भी, ये पुराने दौर के लोग हैं जो बिल्कुल शुरू में अल्लाह के नबी के दौर में मक्का में आते हैं। कहते हैं मैंने रुई ली और अपने कानों में डाल दी, डर गया कि अगर मैंने एक जादूगर की बात सुनी, और जादू पर इनका बड़ा यकीन था कि जादू का असर हो गया तो तोड़ेंगे कैसे। वो मक्का में कानों में रुई लेके फिरते रहे, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है, सूरत अनफाल में आता है, वला उफी कुम खैरन, अगर तुम्हारे बीच में खैर होगी अल्लाह तुम्हें ज़रूर सुनाएगा। और मैं आप सब पे भी आके कह दूं ये बात, उस आयत की रोशनी में मेरा कोई दावा नहीं है, आप में कोई खैर थी तो अल्लाह आज आपको कुरान के पैगाम के लिए लाया। एक किसान भी बंजर ज़मीन पे मेहनत थोड़ी करता है। अल्लाह हमेशा उन लोगों को कुरान सुनने के लिए लाता है जिनके अंदर खैर होती, कुछ की नज़र आ रही होती है, कुछ की दबी भी होती है। कुछ बीज पहले दिन निकल आता है, कुछ 2 माह बाद निकलते होंगे। एक फसल 2 माह में उग जाती, 1 साल में भी उगती है। तो हमें आपको फतवा देने की कोई ज़रूरत नहीं कि किस में खैर है किस में नहीं है। अल्लाह ने ऐसे ही किया। कहते कि मैंने देखा कि हरम की हद में बैठकर एक शख्स कुरान पढ़ रहा है। हो ना हो ये वही शख्स है जिससे मुझे डराया। अब अल्लाह के नबी का कुरान है और इनके कान में रुई है। कहते मेरे दिल में एकदम आया, मैं क्यों डरूँ, मैं कोई बच्चा हूँ? और ये ख़ुद भी शायर थे, और अगर शायरों का इंटेलेक्ट बहुत तेज़ होता है। कहने लगे मैंने कहा लो मैं सुनूँ तो सही, कहता क्या क्या होगा मुझे ज़्यादा ज़्यादा, जैसे जरूरत आई। कहते मैंने अपने एक कान में सुरई निकाल दी तो मुझे उस शख्स की सुरीली आवाज़ और वो कुरान पढ़ा, और उनको तो कुरान समझ आता था। अब आप देखिए ना, आप और मैं अगर मिसाल है कि इमाम सुदेस की आवाज़ में तिलावत सुने, इदरीस अबकर की आवाज़ में सुने, मिशारी अल्फासी की आवाज़ में सुने, तो मज़ा तो हमें भी बहुत आता है। पर अफसोस, दुख, तकलीफ़ और रंज और गम और बहुत ही सदमे की बात है कि हम में से अक्सर को समझ कोई नहीं आ रहा होता, और अगर समझ आ रहा हो तो फिर आंखें बहती है ना। बस फिर वो दूसरे कान की रुई निकली और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह। मक्का लोग जाके कहा तुम इसको दीवाना मजनू कहते हो, दीवाने तुम हो।